ओम शांति। तो आज इस तीखे पुरुषार्थी ग्रुप में मनन चिंतन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। टॉपिक है माया का हीटर और ब्राह्मणों का थर्मामीटर। जैसे अभी अभी हमने गीत में सुना कि अभी ये सोने का वक्त नहीं है, सोने का वक्त बीत चुका है और स्थूल सेवा से तो हम हर रोज जागते हैं, लेकिन क्या हम सूक्ष्म नींद से भी रोज जाग पाते हैं, या कुछ देर तक जागते हैं और फिर से पुनः मीठी नींद में सो जाते हैं? क्योंकि वैसे भी कहते हैं जो सोया है उसको जगाना संभव है,
आसान है,
आसान है, लेकिन जिसने जो सोने का नाटक कर रहा है और ये दिखा रहा है कि मैं तो जगा ही हूं, उसको जगाना असंभव है।
मैं तो सोया ही,
हाँ मैं तो सोया ही हूं, इसको उस व्यक्ति को उठाना जो है, जगाना जो है वो असंभव है। तो जैसे अभी सारे विश्व में कौन सी त्रासदी चल रही है? कोरोना की, कोरोना की महामारी चल रही है। और इस कोरोना की महामारी में हर जो संसार की आत्मा है वो कैसे है? त्रस्त है और बहुत ही परेशान है, जिसमें ब्राह्मण भी अछूते नहीं है। और कोरोना में क्या होता है, पहले पहले शुरुआत कैसी होती है कोरोना के सिम्टम्स की? कोरोना की सिम्टम्स, हाँ। और जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति कोरोना बाधित है अथवा नहीं है, ये किस चीज से चेक करते हैं? उसकी थर्मल स्क्रीन कहते करते हैं, जो छोटा भी थर्मल स्क्रीनर आया है तो उसे यहाँ लगा के चेक करते हैं कि इस व्यक्ति का टेम्परेचर नॉर्मल है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है टेम्परेचर है तो फिर सस्पेक्टेड, मतलब संशयित है, तो इसे मतलब अलग आइसोलेशन में रखने की आवश्यकता है। तो जैसे हमारा आज का जो विषय है वो भी इसी से रिलेटेड है, वातावरण भी वही है, लेकिन हम आज जो टेम्परेचर की बात करेंगे वो हमारा स्पिरिचुअल, सारी बातें स्पिरिचुअल होंगी, मतलब स्पिरिचुअल टेम्परेचर, स्पिरिचुअल थर्मामीटर, ये सारी। अब पहले जो लाइन है वो है माया का हीटर, क्योंकि जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मतलब कितने डिग्री तक या कितने फेरनाइट तक, उसको नॉर्मल कहेंगे, 97 to 99 फेरनाइट अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। इसको ही डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में तो 36 to 37 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर अधिक है तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल से अधिक है, मतलब उस व्यक्ति को क्या आया हुआ है, बुखार आया हुआ है। अब बुखार जो आता है, बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ता है, इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें एबनॉर्मल बॉडी में चल रही है, व्यक्ति बीमारी की ओर बढ़ रहा है या बीमार है, या फिर जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जब सिस्टम सही तरीके से नहीं चल रहा होता है तभी बॉडी बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ता है। अब जैसे हमारा ये पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन है, आध्यात्मिकता के मार्ग में भी हमारा आध्यात्मिक टेम्परेचर, आत्मा का, मन का टेम्परेचर, वो टेम्परेचर हमेशा कई बार बढ़ता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी ज्यादा होता है। तो ये ऐसा खेल जो है ये टेम्परेचर का, ये निरंतर इस मार्ग में चलता ही रहता है। अब इसमें ये टेम्परेचर जो है वो बढ़ाती कौन है? माया। टेम्परेचर माया बढ़ाती है। अब माया के टेम्परेचर बढ़ाने के साधन कौन कौन से? वैसे भी अगर हम मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर जब थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो उस समय बहुत सारे कारण होते हैं, बाह्य कारण। अब वो बाह्य कारणों के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हम कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, बीमार है। और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें एक अलग फीलिंग आती है, मतलब ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं होती, एग्जर्शन लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होने लगते हैं। वो एक मतलब एक सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी में कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है, थोड़ा एबनॉर्मल चीजें चल रही है और ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ये इंडिकेट करती है हमारी बॉडी, टेम्परेचर से समझ में आता है कि व्यक्ति बीमार है या नहीं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो माया का जो हीटर है, अब माया की हीटर में कौन कौन सी बातें आती है और माया कैसे हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है या हमारी आत्मा है या हमारा मन है उसको कैसे टेम्परेचर बढ़ाती है, उसको कैसे इंक्रीज करती है और कैसे हमें स्पिरिचुअली बीमार करती है, जो कि कभी कभी हमें ये महसूस भी नहीं होता कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है या ये माया हमारा टेम्परेचर बढ़ा रही है, इसका एहसास भी बहुत कम बार होता है। तो उसकी
मतलब
हम
पॉजिटिव होता जा रहा धीरे
पॉजिटिव होते जा रहा है।
धीरे
तो इन बातों की हम कुछ थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो जैसे माया की टेम्परेचर बढ़ाने की दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो स्थूल चीजें होती है जो हमें दिखती है कि ये स्थूल चीजें हो रही है इस व्यक्ति के साथ, माया का इस पे वार हो रहा है और इसकी जो इसका टेम्परेचर 100% बढ़ेगा ये दिखता है। लेकिन कई कई जो होती है, जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं तो ये चीजें बहुत ही महीन और सूक्ष्म होती जाती है, मतलब ये चीजें दिखती नहीं, मतलब व्यक्ति को लग रहा है कि मैं तो नॉर्मल हूं लेकिन वो होता है उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। उसके जो कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे नॉर्मल जब टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, 100 के ऊपर चला जाता है, तो वो तो दिख जाता है, मतलब हाथ लगाएंगे शरीर को टच करेंगे तो समझ में आएगा कि बॉडी थोड़ी सी
समझ
गर्म है, आंखों से समझ में आ जाता है सारी चीजें। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो उस समय वो जो टेम्परेचर वो महसूस भी नहीं होता, मतलब होता है उसे फीवर होता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मुझे फीवर नहीं है। तो वो जो स्थिति है वो बहुत ही मतलब भयावह या फिर खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उस स्थिति में वो व्यक्ति ना तो फीवर चेक करने जाएगा और ना ही वो ट्रीटमेंट ले पाएगा प्रॉपर, और ऐसे में उसका जो टेम्परेचर है धीरे 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 फीवर जो है वो फीवर अंदर ही अंदर बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो फीवर इतना दिनों तक वो बढ़ने के कारण इतना अंदर चला जाता है कि उसकी ट्रीटमेंट फिर थोड़ा सा दुर्लभ हो जाती है और वो निमोनिया ऐसी जो बहुत सारी चीजें होती है उसमें फेंक देता है,
कमजोर भी हो जाता
कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, धीरे धीरे वो खोखला बनता जाता है और फिर उस कारण उसकी बॉडी वीक होने के कारण उसका इम्यूनिटी पावर एकदम कम होने के कारण फिर जो बाकी बीमारियां है उस पर
वो
अटैक
उसको
करती
दे
है,
रही।
उसका सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम ही रेजिस्टेंस पावर ही उसका क्या हो जाता है एकदम कम हो जाता है, लो हो जाता है। फिर उस पर बड़ी बड़ी जो बीमारियां है वो वार करती है और उस वार को सहन करने की जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो इतनी मतलब वीक हो जाती है कि उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मतलब उसको सहन नहीं कर पाती बॉडी और फिर वो बड़े बड़े बीमारियों के
शिकार हो
वशीभूत
जाता
शिकार
है
हो जाता है।
काम बीमारी
हाँ बहुत सारे। तो ये हमें अभी चेक करना है, ये महीन चेकिंग है, ये बाहरी बातों का केवल एग्जाम्पल देकर हम अपना स्पिरिचुअल फीवर स्पिरिचुअल टेम्परेचर चेक करने का आज प्रयास करेंगे। और उसमें हर एक अपनी स्व की चेकिंग जरूरी है क्योंकि बाहर का व्यक्ति बीमार है ये तो हमें कभी कभी दिख जाता है लेकिन मैं बीमार हूं या
नहीं।
नहीं हूं ये थोड़ा सा दिखाई नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये भी होता है कि भाई बीमार पड़ना ये भी एक थोड़ा सा एक मतलब प्रेस्टिज पॉइंट होता है कि मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ,
एक्सेप्ट तो नहीं
एक्सेप्ट हाँ
करता
एक्सेप्ट नहीं करता
ईगो।
मैं, हाँ ईगो रहता है मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ, मेरा डाइट तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ सारी चीजें करता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अंदर स्वीकार नहीं होती बात, अंदर हजम नहीं होती, जाती
फिर
नहीं।
वो बढ़ती रहती है अंदर।
हाँ फिर वो बीमारी अंदर के अंदर बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी, फिर
कभी
वो
डॉक्टर भी पूछता है उसको बताते नहीं, पूरा
हाँ
सच
डॉक्टर को
सच
भी
ये बीमारी।
पूरा सिम्टम्स नहीं बताते पूरे। हाँ हिस्ट्री जो हिस्ट्री होती है हमारे डाइट की हमारी जो दिनचर्या
दबा
की
लेते
नींद
हैं
की वो कैसी हो रही है वो सही सही, वैसे कहते हैं कि डॉक्टर और वकील से कभी भी कोई बात छिपानी
छुपाना।
नहीं चाहिए, और जिसने छिपाई उसका मतलब कुछ तो भी आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो माया का जो हीटर है उसमें हम कुछ बातें जो हमने चिंतन की है उससे तो बहुत अधिक हो सकती है कुछ बातें हैं तो उस पर हम देखेंगे। पहली तीन बातें हैं आलस्य अलबेलापन और बहानेबाजी।
हीटर भी देना है और थर्मामीटर भी
थर्मामीटर आ गया
ठीक
आएगा,
है यार, चेकिंग उसमें
थर्मामीटर
क्या सुधार था।
थर्मामीटर आ गया आएगा। तो सारी चीजों को डिस्कस करके सारे माया के हीटर को चेक करके हम फिर उसके बाद देखेंगे थर्मामीटर, फिर उसके बाद देखेंगे उसकी ट्रीटमेंट। तो आलस अलबेलापन बहानेबाज, बाबा ने भी कुछ दिन पहले जो मेरे ख्याल से शांतियों ने मुरली चली थी उसमें बाबा ने कहा था कि आलस अलबेलापन और बहानेबाजी, ये इस तीन चीजों को छोड़ना है। और ब्राह्मण जीवन में, हमारे जीवन में आलस है, अलबेलापन है, बहानेबाजी है, ये भी हमें समझ में कभी कभी नहीं आता। और यही है माया का हीटर। और ये माया क्या करती है, हमारी बॉडी को हीट करती है, हमारी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जर्नी को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को, और बाद में फीवर आता है। तो इस चीज को एक महीनता से स्वयं की सूक्ष्म में चेकिंग करनी है कि मुझ में कितना आलस है, क्योंकि कई लोग आलस को आलस नहीं मानते, अलबेलेपन को अलबेलापन नहीं मानते, बहानेबाजी को बहानेबाजी नहीं मानते। उसको क्या करते हैं, एक अलग इसमें पैकिंग करके उसको एक अलग नाम देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सारी चीजों को जस्टिफाइड करने में, स्वयं को जस्टिफाइड करने में, और स्वयं स्वयं को मतलब बैक करने में बहुत बहुत ही
स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग है और बहुत ही शातिर होते हैं। तो इसलिए इस चीज को समझने की आवश्यकता। और ये जो हम, ये भी जितने भी मीटर है, हीटर माया के हीटर है, ये हीटर हम दूसरों के ऊपर अप्लाई करने के लिए नहीं बता रहे, पहली बात। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो सुनी हुई चीजें होती है, चिंतन की हुई चीजें होती है, हम क्या करते हैं, दूसरों पर अप्लाई करते हैं, दूसरों की चेकिंग करने लग जाते हैं। लेकिन हमें दूसरों की चेकिंग के लिए नहीं है, ये स्वयं की। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दूसरों की चेकिंग करेंगे भी और उसका टेम्परेचर या फीवर समझ में आएगा भी, तो वो ट्रीटमेंट उसको उसकी ट्रीटमेंट करनी, उसका डॉक्टर बैठा हुआ है, हमें हम कोई उसके निमित्त हमने हमको भगवान ने नहीं बनाया हुआ है। तो आलस अलबेलापन बहानेबाजी, ये तीनों बहुत खतरनाक, इसका विस्तार नहीं करेंगे, सब जानते हैं कि क्या क्या होती है। आलस जो है वो शरीर से संबंधित है, और अलबेलापन मन से संबंधित है। और बहानेबाजी, बाबा ने कहा हुआ है एक अव्यक्तवाणी में, जब रमेश भाई ने पूछा था कि भाई बाबा आप कहते हो कि हमें पसंद नहीं, आप नंबर वार कहते हो, तो आप नंबर वार क्यों कहते हो, क्योंकि अब रमेश भाई जी तो एकदम डायरेक्ट बाप दादा से पूछ देते थे, स्पष्ट थे वो। तो फिर एक बार मुरली चली, और मुरली के बाद फिर उसमें बहानेबाजी गया था, और फिर से अव्यक्त बाप दादा के समक्ष रमेश भाई जी गए, तो बाबा ने खुद कहा कि बच्चे आपकी जो ये रहती है कि तकरार, की नंबर वार क्यों कहते हो, एक बात में पूरे ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण नंबर वन है, और वह है बहानेबाजी। बहानेबाजी में सभी ब्राह्मण नंबर वन है। आज आज आपका समाधान हो जाएगा कि बाप दादा ने नंबर वन सबको कहा। तो ये बहानेबाजी के बारे में अव्यक्त बाप दादा ने कहा हुआ, ये सुना सुनाया था अनुभव में रमेश भाई जी ने। फिर है परचिंतन, परदर्शन, प्रपंच, तीन तीन बातें क्लियर है, कुछ दो दो है, कुछ एक है। तो परचिंतन, परदर्शन और प्रपंच, परपंच। तो ये जो परपंच है, ये तीन बातें साकार वाणी में कुछ दिन पहले, मतलब एक दो महीने पहले आई थी, तो आपने उसका विस्तार भी किया था। तो परचिंतन सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, एक तो पहले देह को देखते हैं, जब जैसे ही देह दिखता है, काला, गोरा, थोड़ा सा पहनावे में अमीर, थोड़ा सा मतलब गरीब, ये सब बहुत सारी चीजें, देह दिखा कि देह का बहुत सारा विस्तार है, देह का विस्तार इतना है कि जिसका कोई अंत नहीं है, वो भी बेअंत है।
इसमें एक सबसे बड़ी बीमारी हम गैस बहुत करते हैं,
हाँ
ये व्यक्ति ऐसा
ऐसा
होगा,
होगा।
ये मन से ठीक नहीं है, इसका बड़ा
जी जी जी
गैसिंग जो अनुमान है
हाँ,
ना,
अनुमान,
हमारे
अनुमान का हनुमान बना लेते हैं,
जीवन का
अनुमान का
बड़ा
हनुमान की इतनी आदत पड़ी हुई है कि कैसा रहता है, हम एक हाथ व्यक्ति को देखते, थोड़ा मिले भी नहीं,
एक एक्टिविटी
उससे
देखते
मिले
हैं हम
भी नहीं
ज्यादा मान
है,
लेते हैं।
उससे हमने इंटरेक्ट नहीं किया हुआ है, उसका हमको नाम पता नहीं है, किस बैकग्राउंड से आया है, कहाँ सेवा करता है, कितने वर्षों से ज्ञान में है, उसकी उसकी हिस्ट्री क्या है, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े से एक केवल उसकी झलक से ही
बस
उसका उसको जस्टिफाई, उसको लेबल लगा देते, स्टैंप लगा देते कि व्यक्ति ऐसा होगा।
जैसे एक भाई था, उसको मैंने देखा तो मेरे को लगा ये ना योग बिल्कुल नहीं करता होगा,
जी
लेकिन जब उसका मैंने योग देखा ना, जब कुछ दिन उसके साथ रहा,
साथ
मैं हिल गया, इतना बड़ा योगी था
रहा।
मतलब, लेकिन हमने क्या किया, उसको
हाँ
अनुमान लगा दिया कि ये योग नहीं करता होगा, हम अनुमान में
अनुमान बहुत लगाते हैं, और उसमें क्या होता है, अनुमान के बाद, अनुमान तक ही नहीं, हम नहीं रुकते, हम उस पे स्टैम्प भी लगा देते, लेबल भी लगा लेते। और इंसान की एक फितरत होती है कि किसी पर भी स्टैम्प और लेबल लगाने के लिए आगे पीछे नहीं देखता, तुरंत उस पे लेबल या स्टैम्प लगा देता है कि तुम हो ही ऐसे, तुम सुधर नहीं सकते, मैं मुझे पता है कि तुम कभी मतलब मरते दम तक नहीं सुधरोगे।
फाइनल सर्टिफिकेट,
फाइनल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बांटने में और स्टैम्प लगाने में सब मतलब सारी दुनिया ही, सारी दुनिया ही नंबर वन।
तो
इससे बचना है, अनुमान अपने को किसी के बारे में नहीं लगाना, जी जी जानते नहीं है तो
हाँ इससे सोच सकते हैं मतलब। और अनुमान लगा, अनुमान लगाने की अगर आदत ही है तो अनुमान के डायरेक्शन को चेंज कर देना है। अच्छा भी अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा होगा, हो सकता है इतना पुरुषार्थी हो, बाबा ने चुनी है, बहुत सारे चेंजेस उसमें अगर पॉजिटिवली सोचे तो बहुत कुछ कर सकते। फिर परदर्शन, परदर्शन में भी परचिंतन परदर्शन मिलता जुलता है। परपंच दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, और वहां पे अपनी मतलब कोई मतलब हमारा संबंध ही नहीं उस व्यक्ति से। और बड़े बड़े पॉलिटिकल, बड़े 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 जो सेलिब्रिटी है, उन सेलिब्रिटी के जीवन की चर्चा यहाँ पे करना, अब वो हमें पहचानती भी नहीं, तो ये हम कर रहे थे। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अवगुणी दृष्टि। अवगुणी दृष्टि ही इन सारे चीजों का मूल है, जड़ है, क्योंकि अवगुणी दृष्टि जब तक हमारी समाप्त नहीं होती तब तक हम इस आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ना तकरीबन असंभव के करीब है। मतलब एक तरफ क्या हो रहा है, जैसे उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि हम क्रेडिट का सोचते, डेबिट का सोचते नहीं, और लीकेजेस में सबसे बड़ी चीज अगर कौन सी आती है तो अवगुणी दृष्टि आती है। क्योंकि हम क्या कर देते, थोड़ा सा भी किसी का थोड़ा सा भी कुछ दिखा तो हमारे मन में वो आ जाता है, और जिस क्षण हमें किसी की किसी का अवगुण दिखता है तो उसी क्षण वो हमारा बन जाता है, हमने हमने उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। कईयों ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने दूसरों के अवगुण देखे और उस अवगुण में वो उनसे भी बहुत आगे चले गए, कई लोग बहुत आगे बढ़ गए।
एक भाई था मेरा ना, योग बहुत अच्छा था, लेकिन एक भाई था उसके साथ में थोड़ा समय रहा, तो अमृत वाला झुटका खाता था
जी,
तो मैं उसके बगल में थोड़ा दूर में बैठ के योग करता था, तो मैं खूब संकल्प चलाता था, देखो कैसे झुटका खा रहा, देखो कैसे झुटका खा रहा
जी।
कुछ समय बाद ऐसा हुआ, मैं बहुत दिन झुटका खाया अमृत वाला, माना जो हम देखते हैं वो हमारे अंदर
हमारे अंदर आ जाता है,
किसी की बुराई ना सोच रही।
तो दादी जानकी जी कहती थे कि अवगुण दूसरे का और परेशान मैं खुद हो रहा हूँ, मतलब बीमारी दूसरे की और दूसरे की बीमारी, बीमारी को मैंने बिल्कुल एडॉप्ट कर लिया और उसकी बीमारी उसका दर्द मैं सह रहा हूं, मतलब बीमारी उसकी है और दर्द मैं सह रहा हूं। इतना ये अवगुणी दृष्टि का बहुत गहरा मैट। और बाबा ने कहा हुआ है वैसे भी कि पर चिंतन पर दर्शन पतन की जड़ है और स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। पर चिंतन हाँ पर चिंतन हाँ उसमें ये है, तो पर चिंतन पर दर्शन जिसने छोड़ दिया। अवगुणी दृष्टि का बहुत महीन अभ्यास करना है कि मेरी मेरी अवगुणी दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है, और हर एक की जाती है, इससे अछूता कोई भी नहीं है, इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। फिर झरमुई झगमुई, झरमुई झगमुई और वर्ल्डली न्यूज, अभी जो बहुत ज्यादा माया जिसका वार हर ब्राह्मण पे कर रही है, हर ब्राह्मण पे जिसका बहुत बड़ा वार अभी हो रहा है, झरमुई झगमुई और वर्ल्डली न्यूज। वर्ल्डली न्यूज में अभी सबसे टॉप पे है कोरोना, और कोरोना से रिलेटेड का लॉकडाउन कब खुलेगा, ट्रेन कब शुरू होगी, फलाना यहाँ इतने केसेस आए, वहां इतने आए। अगर यहाँ मतलब एक व्यक्ति आज चर्चा कर रहा था, मैं सुन रहा था कि एक जो माता है उसका किसी निमोनिया वगैरह के कारण डेथ हो गई, वो नदी पे थी, तो नदी पे लेकिन वो फिर उसका मतलब कुछ शक आया डॉक्टरों को, तो उसके सैंपल भेजे गए, उसका सैंपल भेजा गया टेस्ट के लिए, तो वो निगेटिव आया। अब वो व्यक्ति चर्चा कर रहा था कि वो अगर पॉजिटिव आता तो क्या क्या हो जाता, वो आया नेगेटिव, फिर वो ये सील हो जाता, फिर वो सील हो जाता, फिर ये हो जाता। मैंने बोला ये तो हुआ ही नहीं, और कितनी बड़ी मतलब ख्याली पुला और कितनी बड़ी मतलब इमारतें खड़ी की जा रही
है।
तो मैंने बोला कितना बड़ा इसमें मतलब वो शक्ति है वो इसमें। तो वर्ल्डली न्यूज में बाह्य मुक्ता, क्योंकि वर्ल्डली न्यूज में बाह्य मुक्ता ज्यादा रहती है। हाँ पुरुषार्थ में उससे क्या हमें फायदा होता है, इसके लिए सुनो। और मैंने देखा हूँ खुद, अभी 8 दिन पहले का अनुभव है मेरा, कि मैं क्या करता था, मतलब न्यूज को उतना ही नहीं लगता, लेकिन जो 100 न्यूज आती है ना 10 मिनट में आ जाती है, उसमें सारी डिटेल्स आज दिन भरे की। अब वो सेवा करते करते उसको लगा देता था मैं, तो वो सुन लेता था 10-12 मिनट की, चलो भाई कम से कम पता तो चले क्या चल रहा है बाहर। तो जैसे ही वो न्यूज सुनते तक मेरी स्थिति जो होती थी अच्छी होती थी, और जैसे ही मैं 100 न्यूज सुनता था 10 मिनट के बाद मेरी स्थिति एकदम डाउन होती थी। मैंने बोला ये तो बहुत मतलब गलत काम हो रहा है। तो जब से अभी मैंने 7-8 दिन से उसको भी सुनना बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिक स्थिति कांस्टेंट चल रही है।
एक्चुअली जो 100 न्यूज मैं भी पहले सुनता था, 100 न्यूज में ज्यादा व्यर्थ आता है,
ज्यादा व्यर्थ
काम की चीज नहीं, 100 क्या बताएंगे,
100 क्या बताएंगे।
तो सबसे बेस्ट तरीका है अमर उजाला या कोई सा न्यूज पेपर खोलो, उसमें
पेपर
पढ़ लो हाँ, सुनने से अच्छा पढ़ लो।
और वो क्या हो रहा है, पेपर जो हो रहा है वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल है, न्यूज ऑडियो विजुअल है,
वो वही आर्टिकल पढ़ोगे जो आपके काम की है।
सही बात।
आपने देखा यहाँ पेट दर्द की बीमारी, आप छोड़ दिए, नीचे देखा दिल्ली में लॉकडाउन में
बस हेडलाइन हेडलाइन पढ़े,
तो हेडलाइन के नीचे डिटेल देख लिया कि क्या क्या शॉप खुलेंगे ताकि मैं वहां जाऊँ।
हाँ।
तो मुझे उस चीज
वैसा हम कर सकते,
ये आपके हाथ में होगा, सुनने में तो आप पूरे व्यर्थ सुन लोगे।
तो वर्ल्डली न्यूज नहीं पढ़नी है,
कुछ पढ़ सकते हैं, वो भी दिन में एक दो बार,
उसमें भी ज्यादा नहीं जाना है
बहुत, लेकिन विस्तार में नहीं जाना
है, सार पूरा हो जाता है
5 मिनट में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते थे, लेकिन वो
नॉलेज होना चाहिए क्या चल रहा है, जानकारी के लिए,
जानकारी के लिए जरूरी है,
उससे ज्ञान में कनेक्ट कर,
हाँ उसको ज्ञान से कनेक्ट कर सकते,
रावण का क्या प्लानिंग चल रहा है वो मालूम पड़ेगा,
क्योंकि कैसा है बाहर की अपडेट नहीं रहेंगी ना, तो हम जैसे अगर कुछ बाहर के लोग उनको जब ज्ञान देते हैं तो तब नहीं संपर्क, अपडेट भी रहना जरूरी है,
जब वो कोई सवाल करेंगे तो हमको पता ही नहीं रहेगा।
हाँ।
बाहर से डिटैच होने ये भी अज्ञान है,
ये तो थोड़ा सा जरूरी है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका भी बैलेंस रखना जरूरी
है,
बैलेंस, हाँ बैलेंस, क्योंकि कैसा होता है कोई भी कभी भी
एक घंटा चला जाता
है, कभी भी क्या होता है किसी चीज में हम अति में जाते हैं, इसलिए कहा है अति सर्वत्र वर्जते, क्यों कहा गया है क्योंकि अति जहां होता है वहां अंत करीब होता है, अति अगर हो रही है तो समझना चाहिए कि अंत अभी नजदीक है, हाँ वो भी है। तो फिर बाद में है खान पान का लालच, खान पान के लालच के बारे में कर चर्चा हमने की, उसके बाद ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे,
विशेष करके ना आलस और जय खाने
का, हाँ तो दोनों का बहुत गहरा संबंध है, तो खान पान का लालच, तो खान पान का लालच ये भी माया का हीटर है, माया इससे हमारे जो हमारा जो जीवन है ब्राह्मण जीवन उसको उसमें फीवर लाने का पूरा प्रयास करती है। अब
एक चीज और है, निंद्रा से भी मैंने एक परखा कुछ दिनों से, निंद्रा में भी रस मिलता है,
हाँ।
तो हम क्या है नींद पूरा होने के बाद ना थोड़ा रस लेने के चक्कर में
होते हैं।
निंद्रा भी एक प्रकार का रस है,
रस है,
इंद्रिय रस,
इंद्रिय रस ही है ना,
निंद्रा को ये नहीं समझता था, लेकिन अब मेरे को रियलाइज हो रहा है निंद्रा भी एक शरीर का रस है,
शरीर का रस है,
इसको हम लेना चाह रहे हैं,
लेना चाह रहे
हैं एक्चुअली 3 घंटे एक पहर में पूरी हो जाए,
पूरी हो जाए
3 घंटे आप जैसे ही जाग जाओगे एक्टिव हो जाओगे,
हाँ।
लेकिन बिस्तर छोड़ने के बाद,
हाँ।
बिस्तर में हो
10 से 2 के बीच में जो नींद होती है वो पूरे रात भर नहीं होती, फिर 10 से 2 के बीच में ही प्रॉपर डीप स्लीप होती है। फिर आगे है मान शान कामना, मान शान की, मान शान की इच्छा, और फिर सूक्ष्म कामनाएं, जो भगवान ने कहा कि काम जीत कामना जीत ही काम जीत है, ये जो बाबा ने लास्ट संडे की नहीं उसके पहले की संडे, लास्ट के लास्ट वाली संडे में बाबा ने कहा था। तो ये जो सूक्ष्म कामनाएं हैं, हमने बड़ी बड़ी जो इच्छाएं हैं बाहरी संसार की वो तो छोड़ दी है, उसको तो त्याग दिया है, लेकिन सूक्ष्म ब्राह्मण बनने के बाद में भी सूक्ष्म कामनाएं हमारी बची हुई है। अब ये सेल्फ चेकिंग करने की आवश्यकता है कि मेरी सूक्ष्म कामनाएं कौन सी है, और वो इतनी सूक्ष्म होती है कि हमने वही ग्रीड को नीड का नाम रखा हुआ है वो ग्रीड,
अपने आप को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं,
हाँ।
मतलब हम चाहते हैं लोगों का किसी भी लेवल पे हमारे ऊपर अटेंशन खींचे, ये बहुत बड़ी मतलब माया है,
बिल्कुल वो ग्रीड को हमने नीड का नाम देके रखा है। फिर है प्रभाव झुकाव लगाओ,
पहले हम भी थोड़ी सारती यहाँ से,
जी जी ऐसी थोड़ी है, तो उसका बहुत सारा विस्तार हो सकता है, आगे बढ़ना है इसलिए हम ज्यादा उसका विस्तार नहीं करेंगे। फिर है प्रभाव झुकाव और लगाओ, पहले कोई भी व्यक्ति प्रभावित होता है अच्छाई से, अच्छे गुण से, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत योगी है, ये सारी चीजें, और ये मतलब मोह की तरफ जर्नी है ये एक तरफ की। तो प्रभाव, फिर होता है
लगाओ,
झुकाव, पहले व्यक्ति प्रभावित होता है, फिर उस तरफ झुकाव होता है, और फिर होता है लगाव। इस तीन चीजों को, तीन स्टेप को समझना है, ये भी माया का हीटर है। फिर नाम रूप की बीमारी, जो बन उस दिन मुरली में कहा था, नाम रूप की बीमारी तो बहुत क्रॉनिकल डिसीज है। अब वो नाम रूप की बीमारी भी बाबा मतलब माया लाकर क्या करती है, हमें हमारे हमारा फीवर बढ़ाती है। फिर दुख देना, दुख लेना, फीलिंग में आना, मतलब दुख तो देते नहीं कभी कहीं के, लेकिन दुख ले लेते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, अपमान में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी माया क्या करती है, हमें टेम्परेचर बढ़ाती है। फिर अलौकिकपन में मेरापन, अलौकिक में मैपन और मेरापन, अलौकिकता में मेरा डिपार्टमेंट, मेरा सेंटर, मेरी सेवा प्रॉपर, मेरे जिज्ञासु, ये क्या है, बाकी बाहर के बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ दिया, संसार को त्याग दिया, घर को त्याग दिया, घर वालों को छोड़ दिया, लेकिन फिर अलौकिक में लौकिकता को लेके आए, मतलब है अलौकिक, दिख रहा है नाम अलौकिक है लेकिन लौकिकता है वहां पे पूरी, तो ये भी है। फिर अच्छाई का भी अभिमान हो जाता है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं इतने घंटे का योगी हूँ, मेरा पुरुषार्थ इतना है, मैं इतना अच्छा क्लास करा सकता हूँ, मेरी ये विशेषता है, मैं अच्छा स्पीकर हूँ, मैं इतने को क्या कर सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, मैंने इतनों का कोर्स कराया।
अच्छा, वो सूक्ष्म में भी चलता है,
सूक्ष्म में चलता है,
कभी कभी बोलते नहीं है,
हाँ अंदर बहुत चलता है,
अंदर खुश करेगा,
सब के अंदर रहता है, और ये बहुत इतना डीप,
बहुत डीप है
कि इसको आप महीन से अगर परख लिए तो आप
उस्ताद के लाओ।
तो सूरज भाई ने एक बार इसके लिए सॉल्यूशन बताया था, हर कार्य आप बिल्कुल
बाबा को अर्पण
सीख जाओगे ना तो आपका,
तो ये चीजें चीज नहीं,
अदरवाइज नहीं हो सकता।
मतलब फिर क्या होता है, सूक्ष्म मैं बढ़ जाता है, सूक्ष्म मैपन बढ़ता जाता है, और ये मैपन भी माया का हीटर है।
जैसे मान लो किसी टॉपिक किसी व्यक्ति को सुनाने दिया, अगर अपने को वो अच्छा आता है तो अपने संकल्प चलेंगे,
इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ, ये भी रॉन्ग संकल्प है।
ये देखो कैसे मैपन कैसे,
अरे यार इससे तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ,
ये सेवा कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं टाइपिंग कर,
हाँ ये वाला पॉइंट ऐड करना चाहिए था, अरे उसका चिंतन है, उसकी जो कैपेसिटी है जो है वो कर रहा है बेचारा, ये बहुत बड़ी बात है। अब कम से कम जो नहीं बोल पाते मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल पाते, आज भी भगवान ने मुरली में कहा हुआ है कि किसी को क्या धारण नहीं है, एक अक्षर भी धारण नहीं कर सकते, एक अक्षर भी धारण नहीं कर सकते। अब एक अक्षर ना धारण करने वाले से, मुख से एक भी शब्द निकालने वाले से कम से कम बोल तो रहा है, कुछ तो बोल रहा है, बोलने की हिम्मत तो कर रहा है। मतलब कंपेयर अगर करना है तो दूसरे नीचे वाले से करना है, ऊपर वाले से कंपेयर नहीं करना है। फिर इसमें और कुछ बहुत अपने स्व के चिंतन से ऐड कर सकते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है।
एक पॉइंट बोलना चाहूंगा
जी,
गोपी दीदी की एक क्लास थी, उसमें मैं सुना, गोपी दीदी बोले इस संस्था में ना आप जब आएंगे
जी
तो आप देखेंगे यहाँ उल्टा है, उल्टा माना जिसको जो आता है उसको वो नहीं दिया जाता और जिसको जो नहीं आता है वो उसको दिया जाता,
क्योंकि
है
उसको सीखना होता है, सीखना होता है।
इसको देखेंगे तो आपको ये हर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचे, होता क्या है जिसको जो नहीं आता वो उसको करने के लिए बाबा को जाकर मदद लेता है। और अगर जिसको जो आता है अगर उसको वो दे दिए तो अपनी बुद्धि चलाएगा, बाबा की मदद
नहीं लेगा। ये बिल्कुल सही
लॉजिक है, इस संस्था में ऐसा होता है जबकि अदर संस्था में ऐसा नहीं होता,
ऐसा नहीं होता, वो दिया जाता
है,
लेकिन जो जिसको आता है
टेस्ट लेता है पहले बाबा
जी,
फिर वहाँ फिट,
और जो जिसको आता है वो उसको काम दिया जाए, फिर उसमें कोई बड़ी बात नहीं ना। अरे जिसको नहीं आता उसको दिया जाए, वो सीखेगा,
बाबा की मदद लेगा
सीखेगा, बिल्कुल
चांस मिलेगा, कितनी ये क्वालिटी है, कभी कभी खुद को पता नहीं होगा, लेकिन जब वो सेवा को आप हासिल कर लोगे ना वो पूरी पावर आ जाएगी और उसके आप हो सकते हैं मास्टर
बन जाओ।
अभी तो भगवान का मैजिक कहलाएगा जब नहीं आता वो मास्टर बन जाए,
जिसको कुछ ना आता हो,
यार इसको तो सब आता था तुमने क्या किया। अगर दादी जानकी आठवीं फेल पूरे विश्व में भ्रमण की, अगर उसी की जगह बहुत पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली करती तो दुनिया कहती अरे
इससे कौन सी
बड़ी कर सकते, फर्क पड़ गया ना।
तो अभी देखेंगे हम ब्राह्मणों का थर्मामीटर। अब फीवर अगर चेक करना है, टेम्परेचर अगर चेक करना है तो उसके लिए चाहिए थर्मामीटर। अब थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर सबको पता है क्योंकि हर एक ने थर्मामीटर यूज किया हुआ है, हर एक को आज तक मतलब कभी ना कभी फीवर आया ही है। अब अभी जो थर्मामीटर आए हैं और थर्मल स्क्रीनिंग वाले, अब आपको एक अनुभव बता रहे कि हम जब आइसोलेशन में रखा था हमको और बाद में जब जाना पड़ा,
आपको कितने दिन रखा था?
10 दिन। तो फिर जब हम गए, भेजा गया कि भाई एक बार चेकिंग करके लिख के ला लो डॉक्टर जी के पास से, तो सचिन भाई जी के पास गए तो बोले अभी कुछ ठीक है ना, फीवर तो नहीं, मतलब नहीं एकदम नॉर्मल है, और फीवर था भी नहीं। फिर वो दूसरे उनके साथ साथी जो थे उनको बोले इनका टेम्परेचर चेक करो, तो जो भी थर्मल स्क्रीनिंग वाला जो आता है थर्मल स्क्रीनर, तो थर्मल स्क्रीनर उन्होंने लगाया यहाँ पे, तो थर्मल स्क्रीनर में 100 के ऊपर फीवर दिख रहा था। मैंने बोला मुझे फीवर नहीं हो रही है, क्या हो गया बाबा, मतलब फीवर तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो बोले आप तो बोले कि फीवर, मैंने बोला मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तो ठीक है बोले, वो थर्मामीटर दूसरा लेके बोले नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाला थर्मामीटर लाए, फिर उसको ये चेक किया, उससे नॉर्मल था। मतलब कभी कभी थर्मामीटर में
भी प्रॉब्लम करता
है, हाँ मतलब कभी कभी जो मशीन होती है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये हमने उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि जो हम ब्राह्मणों के थर्मामीटर बता रहे हैं वो थर्मामीटर में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब थर्मामीटर हो सकता है कि फीवर मतलब शो ना कर रहा हो और फीवर हो, और हो सकता है कि
शो कर रहा हो
लेकिन ना हो, ये भी सारी चीजें है। तो उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसमें थर्मामीटर में भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। थर्मामीटर में कुछ पॉइंट्स हमने जो निकाले हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि थर्मामीटर के लिए ये सारी चीजों का हमें मतलब हमारे फीवर है या नहीं है, माया ने फीवर हमें हमको लाया है नहीं, उसको चेक करने के लिए पहले तो हमें अंतर्मुक्ता की गुफा में जाना होगा। थर्मामीटर यही है, कौन सा थर्मामीटर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें है, फीवर है लेकिन वो हमें मतलब स्वीकार नहीं हो रहा है, हमने उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि भाई फीवर है, तो उसके लिए पहले अंतर्मुक्ता की गुफा में जाना पड़ेगा। आज भी था, स्कॉलरशिप लेना है तो अंतर्मुक्ता का गुण धारण करना पड़ेगा, तो अंतर्मुक्ता की गुफा में हमें जाना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अंतर्मुक्ता की गुफा में जाने के बाद महसूसता की शक्ति से, अंतर्मुक्ता की गुफा, फिर सेकेंड लाना पड़ेगा महसूसता की शक्ति, पावर ऑफ रियलाइजेशन। तो ठीक है, उसको हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि ये मुझ में है या नहीं है, ये सारे जो माया के जो हीटर है, एक एक हीटर को चेक करते जाना पड़ेगा, तब कहां समझ में आएगा, सूक्ष्म चेकिंग हम कर सकेंगे और वो पकड़ में आएगा फीवर। फिर है अगला कि सेल्फ चेकिंग, मतलब महसूसता की शक्ति जब आएगी तब सेल्फ चेकिंग हो सकती है, तो फिर सेल्फ चेकिंग, और फिर लास्ट में जो है जो श्रीमत, फिर उसको श्रीमत के इस पे चेक करो कि भाई ये श्रीमत के ऊपर है या नहीं है। सेल्फ चेकिंग तो मैं कर रहा हूं लेकिन ये श्रीमत के आधार पे है या नहीं है, श्रीमत के अनुरूप है या उससे कुछ अलग है, कुछ हमारी मनमत या परमत तो हम उसमें मिक्स नहीं कर रहे चेकिंग करते समय। और फिर है उससे भी आगे फॉलो फादर, मतलब जो बाप समान सारी चीजें है, या मतलब बाबा ने जो की थी उसी प्रमाण हमारी चल रही है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बाबा ने कहा है लास्ट में कि किसी को नहीं देखो किसको फॉलो करो, एक बाप को फॉलो करना है। तो ये सारे थर्मामीटर है, इन थर्मामीटरों को हम महीनता से यूज करेंगे, इस थर्मामीटर को लगाएंगे वहां पे, तो हमें माया की जो हीट है या जो फीवर है वो फीवर क्या पकड़ में आएगा, अदरवाइज पकड़ में आना असंभव के करीब है।
बीमारी का इलाज के लिए पहले तो बीमारी को पकड़ में आएगा डॉक्टर को, तब तो।
और फिर अभी तीसरा है,
जैसे आपने सेल्फ चेकिंग बोला, तो मैंने कहीं सुना था जो आप एक्चुअल में होते हो ना अंदर,
जी
पूरी दुनिया आपको
वैसी दिखती है।
तो अगर हमने अंदर को परफेक्ट बना लिया तो हमें दुनिया बिल्कुल अच्छी लगी। ये बहुत पावरफुल लाइन है, अगर आप देखें
बिल्कुल।
ये मेरे को अभी अचानक से टच हुई कि अंदर हम जैसे होंगे पूरी दुनिया कैसी
वैसी दिखेगी वैसी, क्योंकि बाहर की दुनिया
व्यवहार भी वही करती है, जैसे हम अंदर से वृत्ति छोड़ते हैं ना वाइब्रेशन, वही दूसरे व्यवहार।
आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, वो अधिक इसके अधिक कुछ भी नहीं है। हाँ। वो बाहर रिफ्लेक्शन है केवल आपके अंतर जगत का। हाँ। तो देखिए, अगर व्यक्ति खुश है तो सारे हमको खुशी खुश दिखते, अगर व्यक्ति निगेटिव है तो सारों में निगेटिविटी दिखती है।
जैसे मन में काम विकार है जिसको हर नारी में वासना नजर,
हाँ,
और जिसके मन में श्रद्धा भाव भक्ति है
उसको हर नारी में देवी दिखेगी, देवी नजर आएगी।
ये देखो ना,
एक सूक्ष्म और चीज है कि जिस दिन आप मुरली और अमृत वेला पावरफुल होगा उस दिन आपको सामने कैसा ही व्यक्ति आएगा,
हाँ, अच्छा ही दिखेगा।
जिस दिन आपको पूरी डाउन लो बैटरी है उस दिन कैसा ही व्यक्ति आ जाए, अंदर से आप हताश
हो,
वो भी परेशान।
फिर इस पे ट्रीटमेंट, थोड़ा आगे बढ़ते ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, तो पहला ट्रीटमेंट तब हो पाएंगे जब स्वीकार करेंगे कि मैं बीमार हूं, मेरा टेम्परेचर बढ़ा है, ये स्वीकार करेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्वीकार ही नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं बीमार हूं, तो पहली बात तो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। अब डॉक्टर के पास अगर वो नहीं जाता है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी नहीं और उसकी बीमारी अंदर के अंदर बढ़ती जाएगी। तो इसलिए पहले स्वीकार करना है। अगर थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि मैं बीमार नहीं हूं, तो भी एक मन का वहम निकालने के लिए कम से कम डॉक्टर के पास चले जाओ, या फिर ये जो हमारा थर्मामीटर, उस थर्मामीटर से चेक कर लो, थर्मामीटर हमारे पास ही रहता है। अब ये थर्मामीटर सबके पास है, सेल्फ चेकिंग, महसूसता की शक्ति, श्रीमत, ये सारी चीजें हमारे पास होती है, उस थर्मामीटर को लगा के देख लो कि भाई ये हम बीमार है, फीवर है नहीं है। फिर उसके बाद जो अभी कोरोना से संबंधित बातें हैं, क्योंकि कोरोना में भी फीवर आता है, ठीक है, तो उसके पहले वो बातें देखने के पहले हम देखेंगे फिर जैसे कौन सा इंजेक्शन लेना है। तो इंजेक्शन है मनमना भाव का, मनमना भाव का इंजेक्शन लगाओ तो फीवर भागेगा। फिर मध्याजी भाव की टैबलेट लो, मध्याजी भाव की टैबलेट लो, तो फिर क्या हो जाएगा, वो फीवर आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा और धीरे धीरे भाग जाएगा। ये ट्रीटमेंट है। और सबसे अहम बात, ये ट्रीटमेंट हमारी कौन करेगा, हमारा रूहानी सर्जन, रूहानी डॉक्टर। तो पहले रूहानी सर्जन के साथ क्या करो, पहले वफादार रहो, ईमानदार रहो, उसको सारी बातें उससे शेयर करो कि हाँ सच्चाई से सफाई से, क्योंकि डॉक्टर के पास सारी चीजें कैसी होती है, डॉक्टरों को सारी चीजें एक एक करके बतानी होती है। अगर हम डॉक्टर से एक भी चीज छुपाएंगे और आगे चल के उस चीज के कारण, वो बात छुपाने के कारण अगर बीमारी अलग दूसरा रूप, विकराल रूप धारण करती है, तो डॉक्टर बोलेगा कि आपने उस समय ये बताया नहीं था, नहीं तो मैं उसी समय इसकी ट्रीटमेंट कर देता। तो डॉक्टर के पास कोई भी चीज, मतलब यहां तक कि जितने भी सीक्रेट बात है, सब डॉक्टर को बतानी होती है। तो वो जो हमारा स्पिरिचुअल डॉक्टर है, उस स्पिरिचुअल डॉक्टर को भी हमें सारी चीजें बतानी है।
एक संबंध सर्जन का,
हाँ सर्जन का,
संबंध में एक संबंध
सर्जन का भी है। तो उस रूहानी सर्जन, उस सुप्रीम सर्जन से कोई बात छुपानी नहीं है, तो हमारी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करेगा और फीस भी नहीं लेता।
जब बाबा शरीर छोड़ रहे थे तो दादी बोली हम डॉक्टर को बुला के ला रहे हैं, हाँ, तो बाबा ने कहा मैं तो रूहानी सर्जन से,
हाँ, मैं रूहानी सर्जन, वो डॉक्टर क्या करेगा।
तो देखो बाबा की स्मृति,
स्मृति देखो कैसी थी। तो ये चीजें है। फिर जो अभी कोरोना के संबंध में जो चल रहा है उससे रिलेटेड देखेंगे हम, क्योंकि कोरोना में भी फीवर आता है, वहां भी सारी चीजें मतलब ट्रीटमेंट दी जाती है। तो कोरोना में होता है आइसोलेशन या क्वारंटाइन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये पता चल गया कि अभी हम बीमार है और इसकी ट्रीटमेंट करनी, उसके लिए हमें सेल्फ आइसोलेशन या क्वारंटाइन हो जाना। अब वो क्वारंटाइन या सेल्फ आइसोलेशन कौन सा है, हमारा सेल्फ आइसोलेशन या क्वारंटाइन है यहाँ का अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, एकांत में जाओ, जहां पे कोई किसी से हमारा संबंध नहीं है, वहां पे केवल मौन में रहो, मनन चिंतन करो और ज्ञान चिंतन, परमात्म चिंतन और स्व की कमजोरी का चिंतन करते जाओ। जैसे जैसे चिंतन करते जाएंगे हम, वैसे वैसे उस चीज से छूटते जाएंगे। और ये 14 दिन का ही ना हो केवल, ये हमें रोज ये सेल्फ आइसोलेशन की आवश्यकता है, क्योंकि हम बाहर, क्योंकि सीधा है, सीधा गणित है कोरोना बीमारी का भी, बाहर घूमोगे, बाहर घूमना मना है। तो कौन से बाहर घूमना मना, यहाँ हमेशा अंदर रहो। कहाँ रहो, अपने यहाँ। एक तो अपनी आत्मा, या तो ऊपर क्वारंटाइन रहो, और हो क्या रहा है, बीमारी हो रही है लोगों को, इंसानों को, और हमने क्वारंटाइन करके रख दिया बाबा, बाबा को बाबा के कमरे में और कुटिया में, हालांकि उसको कोई चांसेस नहीं है कोरोना होने का, ना उससे हमको हो सकता है, ना हमसे उसको हो सकता है। तो
ब्राह्मणों के पुरुषार्थ को बैन कर
देना। तो क्वारंटाइन एक तो यहाँ हो जाओ, अकाल तख्त की अकाल मूर्त आत्मा यहाँ अकाल तख्त में क्वारंटाइन है, या फिर परमधाम में, या फिर सूक्ष्म अंतर्मुक्त, हाँ मास्क भी आगे आगे आ रहा है मास्क। तो हाँ, तो फिर मास्क लगाना है, क्योंकि मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फाइन है और जेल भी जाना पड़ेगा। अब ये कौन सा मास, ये है मौन, स्वदर्शन और अंतर्मुक्ता का मास। अब ये मास, क्योंकि यहाँ मास लगा हुआ है मतलब बोलना नहीं है, मास कौन सा लगाना है कि बोलना नहीं, बोले और मुख से अगर कुछ गलत सलत शब्द निकले तो सीधा सजा रेडी है। और सजा कौन सी है, सीधा माया अपने जेल में आपको बिठा देगी, मतलब मुख से अगर कुछ गलत निकला तो स्थिति डाउन और सीधा माया के जेल में चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हर समय मौन का, अंतर्मुक्ता का और स्वदर्शन चक्र घुमाने का।
लेकिन डंडे भी पड़ रहे हैं,
बोलना तो है नहीं, सुनना भी
सुनना भी नहीं।
एक बार सूरज भाई क्या बोले, मेरी पावरफुल बहुत स्थिति रहती थी, हमें किचन में बढ़िया अपनी सेवा कर रहा था, एक भाई आया घूमते हुए, थोड़ा बैठो जैसे कोई भी आता,
बाबा मिलन का दिन था
जो भी था, तो उसने क्या हुआ कुछ बुराई बता दी, सूरज भाई बोले मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने केवल सुना, सुनी और मेरी पूरी अवस्था जो है खत्म हो गई। तो सुनने से भी अवस्था पे,
सुनने से अगर ये असर होता है वो भी महारथी भाइयों का, तो बोलने से क्या होता होगा फिर, इसके इससे तुलना करें,
हर आत्मा को प्रभाव पड़ेगा, ऐसा
प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव नेगेटिव चीज में भी एनर्जी होती है,
वो तो महसूसता की शक्ति
से परख लिया है, सुनने से क्या पता नहीं बनता।
जैसे पॉजिटिव चीज में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वैसे निगेटिव चीज में भी एनर्जी होती है,
और ज्यादा होती है,
हाँ ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि अभी कलयुग है और कलयुग में मैक्सिमम एनर्जी कौन सी फ्लो ये हो रही है, स्प्रेड हो रही है निगेटिव, तो निगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी का कम होता है, इसलिए पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी पे ओवरकम नहीं कर सकती, प्रभाव नहीं डाल सकती, इसलिए निगेटिव एनर्जी तुरंत हमें क्या कर देती है उस चीज, हाँ
इफेक्ट कर देती है, अभी बढ़ रही पॉजिटिव एनर्जी,
अभी बढ़ रही है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि सतयुग आने वाला है। तो इसलिए फिर मास्क पहनना है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग कौन सी रखनी है, हमें जिसकी ज्ञान मुक्त और योग मुक्त अवस्था है उससे बहुत दूर रहना है, 1 मीटर नहीं बहुत अनेकों मीटर की दूरी रखना है। तो कुसंग से, उससे हमारा
सोशल डिस्टेंस,
हाँ फिर सोशल डिस्टेंसिंग एक तो उन व्यक्तियों से कुसंग से, फिर देह, देह के वस्तु, वैभव, पदार्थ, संबंध, संपर्क, इससे भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। इवन आत्मा को स्वयं के देह से भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा आत्मा चिपकी हुई अपने देह से। अगर हम अपने देह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, स्पिरिचुअल सोशल डिस्टेंसिंग, तो स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग अगर हम नहीं रखेंगे अपने देह से, तो आत्मा, जैसे एक क्लास में सचिन भाई ने कहा था कि अभी हम है गीला नरियल, मतलब गीला नरियल वो इसके साथ चिपका हुआ रहता है खोर के साथ, तो हमें बनना है सूखा नारियल। अध्यात्म है गीले नारियल से सूखे नारियल की ओर की यात्रा।
एक बार दादी जानकी के पास एक बहन आई, बोली दादी ये जो बहन है ना जी बहन के लिए, इसका मेरे से बहुत मोह है। तो दादी ने कहा उसका तेरे से मोह नहीं है, तेरा खुद के शरीर से इतना मोह है इसलिए उसका,
इसलिए उसका मोह है।
बहुत बड़ी साइकोलॉजी है आप पे, जैसे अगर खुद के शरीर से मोगा तभी दूसरा आपके शरीर को भी देखेगा।
हाँ, तो जैसे रामायण का चल रहा है, राम क्या हुआ था, राम ने कहाँ वार किया, कहाँ वार किया था, रावण के नाभि पे। तो नाभि ही, रावण की नाभि ये देह है। ये जो हमारा स्पिरिचुअल रामायण है, ये रावण की नाभि पता है कौन सी है? हम बाहरी 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 सर को कलम कर रहे हैं, सर को काट रहे हैं, इस चीज को खत्म करेंगे, उस चीज को खत्म करेंगे यहाँ, लेकिन हमने अंदर ही झांका नहीं है, क्योंकि वो जो अमृत कुंभ है वहां, वो कहाँ छिपा था, उसके नाभि में। और हमारी इस पुरुषार्थ के मार्ग में भी अमृत कुंभ, या फिर जहां हमें वार करना है, वो छिपा हुआ है हमारे अंदर, हम भीतर उसको ढूंढ रहे हैं।
सन्यासी लोग भभूत लगा लेते हैं पूरे शरीर में, इससे वो लगे कि हम मरे पड़े,
मरे पड़े,
राख लगा लेते हैं। अगर आपने देखा होगा तो कुंभ के मेले में
जी, वो जी
प्रयास
करते हैं, एक्सटर्नल चीजें होती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने देह से भी डिस्टेंसिंग रखनी है। आत्मा डिटैच रहे, आत्मा हर बार इस शरीर से बाहर निकले, अशरीर अवस्था में रहे, तो वो हो गई हमारी देह से डिस्टेंस।
केयर करना है
लेकिन उसको बहुत अधिक तवज्जो नहीं देना है।
हाँ।
बहुत अधिक
ज्यादा नहीं लग रहा है ना,
हाँ
ज्यादा सोचने का नहीं, और तपाना है उसको,
तपाना है,
ज्यादा सोचेंगे तो धारा बन जाता,
उसको मजबूत करना है,
उठने की इच्छा हो रही हो थोड़ा 5 मिनट देखना है, ऐसा नहीं सोचोगे 1 घंटे बैठे 5 मिनट और बैठ, जो 5 मिनट बैठे तो और 5 मिनट
ट्राई करके
देखो। ऐसा नहीं कि थोड़ी गर्मी लग गई तो तड़प रहे रहे फैन ऑन करो, थोड़ा सह रहे,
ये भी देहभान है, ये भी देहभान है,
शांत करना चाहिए।
गर्मी हो रही है, मुझे ठंडी लग रही है, भी मौसम ऐसा है, अभी ऐसा हो गया, अभी ये भी बहुत बड़ा देवान है।
मुझे फैन चाहिए था, भी हो
गया भाई, लाइट बंद करो ना, नींद आ रही है, ये पूरा देह,
इसका भी अभ्यास करना है कि लाइट में भी नींद आए, कान के पास कोई चिल्ला भी रहा हो तो भी नींद आए, और कोई एकदम हमारे पास में कोई बातें कर रहा हो तब भी योग लगे।
सारे अभ्यास
कर रहे
हैं, बातों को म्यूजिक समझ,
म्यूजिक समझना है,
जैसे कोई खर्राटा मार रहा है तो उसको योग की म्यूजिक बना।
वास्तव में आजू बाजू के आवाज का या शांति का योग से संबंध है ही नहीं,
यह
हमारा भ्रम है, यह हमने उस माइंड को प्रोग्रामिंग दी हुई है कि हमें मेरा शांति में योग लगेगा। वास्तविक आत्मा अगर यहाँ से डिटैच हो गई तो आत्मा को यहाँ की इससे कुछ लेना देना ही नहीं।
मेरा ध्यान कहीं और है, आप कुछ बोलते हो
तो कहाँ,
क्या बोला, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, इसका मतलब ध्यान अगर कहीं और है तो आवाज का कोई प्रभाव,
मन बुद्धि अगर कहीं और है
हाँ।
तो वहाँ आजू बाजू में क्या हो रहा है इससे उसका कोई संबंध नहीं। फिर सोशल डिस्टेंसिंग में
योग ही नहीं हुआ ना,
योग ही नहीं
हुआ, उड़े कहाँ रहे,
उड़े ही नहीं। तो फिर अगर हम देह से डिस्टेंसिंग रखेंगे, स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग, तो ऑटोमेटिक हमें बाकी बाहरी चीजों पे ज्यादा मतलब प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, फिर वस्तु, वैभव, व्यक्ति, संबंध, संपर्क, ये सारे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। फिर बाद में है सैनिटाइजिंग, क्योंकि बार बार हमें सैनिटाइज करने के लिए बताया जाता है कि एक एक घंटे में हाथों को सैनिटाइज, कौन सी सैनिटाइजिंग, तो हमें सैनिटाइजिंग करनी है आत्मा तथा मन की सैनिटाइजिंग करनी है। हाँ, आत्मा तथा मन की सैनिटाइज करनी है, और टाइम टू टाइम दिन में 24 बार ड्रिल करनी है निराकारी और आकारी, ये है सैनिटाइजेशन। 24 घंटे में 24 बार, मतलब हर घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ, मन को और आत्मा को निराकारी स्थिति में स्थित करके या आकारी स्थिति में स्थित करके सैनिटाइज कर रहा हूँ। मतलब अगर गलती से उस एक घंटे में कुछ हो भी गया, कुछ जर्म्स लग गए हाथों में, कुछ यहां वहां छू लिया, मन यहां वहां थोड़ा सा भटक के आ गया, तो सैनिटाइज कर लो, कोई बात नहीं, सैनिटाइज कर लो, तो आगे उससे मतलब जो इन्फेक्शन हो सकता है वो इन्फेक्शन नहीं होगा, हाँ क्लियर हो जाएगा वो इन्फेक्शन, जो थोड़ा बहुत होने के चांसेस है वो चांसेस भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये हाँ माया की कीटाणु,
भाई ने कहा था कई लोग अमृत वाला योग करेंगे बहुत पावरफुल, दिन भर फिर जीरो और फिर सीधा शाम को करेंगे, ऐसा नहीं हो दिन भर भी जो जगती हाँ। रहे बहुत ना जगे,
थोड़ा थोड़ा घृत
गीत सुन लो, मुरली पढ़ लो, अपना स्वरूप अभ्यास कर लो,
मतलब थोड़ा थोड़ा घृत यहाँ पे डालते रहो डालते रहो।
इस चीज की भी रहे कि हमें प्रसाद करना है तो वो भी बहुत कल्याण का है, अरे हम ड्रिल करते हैं ये स्मृति आ जाए तो बहुत बड़ी
बहुत बड़ी बात है, स्मृति भी रहे
तो रात को अकाउंट देखो तो बराबर,
बीच में गायब हो गए,
कभी कभी चार्ट लिखने की इच्छा नहीं होती, इतना धर्म ग्रीन खराब जाता है कि चार्ट अरे दो क्या काय के लिए चार्ट लिखना, चार्ट लिख के खुद का ही मतलब पोल खोलने वाली है तो उससे अच्छा काय के लिए अपना अपनी पोल खोलो,
पता तो है ऐसे हालत आ जाता है, पता तो है,
पता तो बाबा को भी पता है और मुझे भी पता है, और तीसरे दूसरे तीसरे किसी को दिखाना नहीं है,
दिखाना नहीं है।
और लास्ट में है फिर बूस्ट योर इम्यूनिटी, क्योंकि किसी भी बीमारी से फीवर से अगर बचना है तो उसके लिए इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करो, उसको बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिक उस चीज से बचे रहेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर प्रिवेंटिव है हम तो फिर हमें क्योर करने की आवश्यकता नहीं है, तो यही माया का हीटर काम ही न करे, माया का हीटर काम ही न करे, माया का वार काम ही न करे, ताकि इतने सारे प्रोसेस से हमको जाने की नौबत ही ना आए, क्योंकि माया का हीटर अगर काम कर रहा है तो हमारी उसका कारण क्या है, फीवर अगर आ रहा है उसका सीधा सीधा कारण है कि हमारा इम्यूनिटी पावर डाउन है, वीक है, इसके कारण हम पर वो बीमारी का वार हो रहा है। तो पहले क्या करना है, आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाना है, मन को इतना शक्तिशाली बना लेना है ताकि हमारी इम्यूनिटी पावर ही इतनी सक्षम हो, इतनी समर्थ हो कि माया का हीटर काम ना करे, फिर उसमें कोई थर्मामीटर लगाने की जरूरत ना पड़े, फिर कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये भी टाइम ऑफ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है,
इम्यून सिस्टम इतना वीक रहता है, थोड़ा हवा लगी सर्दी हो गया
जी,
थोड़ा दही खाया जुकाम हो गया,
जुकाम हो गया,
ऐसे यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा इंटरनेट में कुछ देख लिया माया आ गई,
स्थिति डाउन हो गई, त्रस्त हो गया,
ये क्या है मतलब इम्यून सिस्टम हमारा वीक,
किसी को मैंने सुना था कि हमारा अश्लील से अश्लील दृश्यों में मन अकंप रहे, उसको उसको कहेंगे सही मायने में ब्रह्मचर्य,
बोलते अश्लील दृश्य अश्लील नहीं होते, दृष्टा
अश्लील होता है, क्योंकि हम बाहरी चीजों को दोष देते हैं, वो चीजें हमारे मन में छिपी है, वो ट्रिगर है सिर्फ, ट्रिगर भी काम ना करे, हम पर ट्रिगर भी काम ना करे तब कहेंगे कि हम
मजबूत
हो गए। तो फिर इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन्स लेते रहना है, तो मल्टीविटामिन्स कौन से पता है, मल्टीविटामिन है रोज की साकार मुरली से पॉइंट्स निकालना, उस पर चिंतन करना, फिर अव्यक्त वाणी, फिर अच्छे अच्छे दादियों के बड़े महारथियों के क्लासेस बुक्स, ये सारी चीजों को अगर हम सुनते जाएंगे तो हाँ शेयरिंग वो मनन चिंतन में आ गया, फिर ग्रुप डिस्कशन, तो इससे क्या होगी हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी, जिसके कारण ये जो सारी चीजें है उस चीजों से हमें उस प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा और हम अच्छा स्ट्रांग रहेंगे, तो माया का वार नहीं होगा। फिर बाद में आपने तीन पॉइंट दिए थे कि नब्ज कैसे देखे, तो जैसे आज का मुरली का था कि बाबा ने कहा कि नब्ज देखकर ही तुमको क्या करना है, ज्ञान देना है, क्योंकि ये ज्ञान रत्न है, कहीं भी फेंकने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी फेंक दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो अगले व्यक्ति को क्या करना है, नब्ज देख के ही ज्ञान देना है। और फिर दूसरा था अल्प का निश्चय कैसे कराए, अब अल्प का निश्चय कराने के लिए पहले उसको कुछ लौकिक उदाहरण देने पड़ेंगे कि आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में अपने पिता का, अपने बाप का महत्व क्या होता है, और जिस व्यक्ति को बाप नहीं होता उसकी स्थिति कैसी रहती है, तो वो फिर खुद ही बताएगा कि भाई बाप जिसका होता है उसका ऐसा वैसा, ये सारी चीजें सबको बताए। तो फिर उसको बोलना है कि भाई अगर इस सारी दुनिया में ये सारी चीजें है, और अगर सारी दुनिया कहती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम आपस में भाई भाई है, तो फिर जरूर हमारा कोई एक पिता भी तो होगा ना, जिसको हम मानते हैं, जिस शक्ति को मानते हैं, तो अगर हम उस पिता को भूल गए, हम या कई लोग कहते हैं कि हमारा कोई पिता नहीं, हम ऐसे ही बने बनाए हैं, कुदरत है, ये सारी चीजें, तो उस व्यक्ति का हाल कैसे होगा, मतलब बिना बाप की संतान का क्या क्या हाल होगा। तो हम बिना बाप की संतान खुद को फील करते हैं, इसके कारण हम भटक रहे, इसके कारण ये हमारी स्थिति हो गई है, ऐसे उदाहरण देकर अगर हम उनको समझाएंगे तो अलग का उनको निश्चय हम करा सकेंगे, ये सेवा के लिए
से भी होता है, खुद का
हाँ, स्वयं में जितना निश्चय अधिक होगा उतना हम दूसरों में निश्चय हमारा उनका बिठा सकेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा कहना कि हमारा ही डगमग होता है, कभी कभी हम ही थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कि इसको कैसे समझाए, कंफ्यूज होते हैं।
बाबा ने दो दिन पहले कहा भी था दही अभिमानी का ही तीर लगेगा,
हाँ देही अभिमानी जो होगा उसी उसी का तीर लगेगा आज भी तीर नहीं लगेगा। फिर तीसरा पॉइंट है हम आगे कैसे बढ़े। पुरुषार्थ के मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो माया की हीटर को हमेशा चेक करते रहो, ब्राह्मणों का थर्मामीटर यूज करो, और अगर कुछ फीवर नजर आ भी रहा है थोड़ा बहुत तो ट्रीटमेंट लेते रहो, मनमाना भव मध्य जीव ये ट्रीटमेंट लेते रहो, और जो भी अभी कोरोना का है चल रहा है उसमें सेल्फ आइसोलेशन, आउटिंग नहीं करो, बाहर जाना बिल्कुल मना है, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है। बाबा ने जो हमें लक्ष्मण रेखा ओढ़ के दी है कि इस रेखा के बाहर अगर गए तो तुम्हारा शोक वाटिका में जाना तय है, फिर मत कहना पहली, क्योंकि लक्ष्मण ने पहली बता के रखा था कि भाभी इस लाइन को क्रॉस कुछ भी हो जाए लेकिन इस रेखा के बाहर मत जाना। फिर भी लक्ष्मण का मतलब मन को, जो लक्ष्मण मतलब कौन, जो लक्ष्य, जो मन को जो हमने लक्ष्य दिया है, और उस लक्ष्य को अगर हम भूल जाते हैं, मन अगर लक्ष्य को भूल जाता है तो उस रेखा को भूल जाता है, तो ऑटोमेटिक हम कहां जाते हैं, रावण की शोक वाटिका में।
रावण भी भेष बदल के आएगा,
भेष बदल के आएगा, ब्राह्मणों के रूप में आएगा, बैज लगा के रावण भी बैज लगा के आएगा, और ब्राह्मणों, हाँ, और ब्राह्मणों के लिए जो पेपर आएंगे रावण के या बाहरी, वो ब्राह्मणों के द्वारा ही आएंगे। तो ऐसा समझना है, पहले ही पेपर के लिए अमृतवेली तैयार रहना है कि आज मेरे सामने ये पेपर आने वाले है और मुझे उसके लिए फुल तैयार रहना है, क्योंकि अगर हम तैयार नहीं होते ना, अचानक अगर सडनली अगर कुछ आ जाता है तो फिर वो चीज हमें बहुत ज्यादा मतलब बाधित कर देती है या प्रभावित कर देती है, फिर उसके लिए क्योंकि हम तैयार नहीं होते ना। अगर पहले से हम तैयार रहे कि आज मेरे हो सकता है कोई मुझे गाली भी दे दे, उसके भी चीज के लिए अमृतवेली खुद को तैयार करना है, हो सकता है मेरी कुछ गलती नहीं होगी आज, फिर भी मुझे दो चार सुना दे चार पांच लोगों के सामने,
कुछ काम के लिए तुम्हारे साथ हाँ, सेवा होता है,
निठल्ले हो तुम, योग में सोते हो तुम, कौन सा तुम जचाऊ हो, तुम शो ऑफ करते हो, तुम बहुत ज्ञान योग सुनाते हो, तुम ऐसा तो तुम वैसा, तुम अभी क्या आए, हम तो इतने साल से ज्ञान में, कुछ भी सुना सकता है। उस चीज के लिए अगर हम पहले से तैयार होंगे तो उस चीज को मतलब एडजस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज
हम क्या जाने, हम इतने साल से हैं अभी आए
पर। एक भाई कहता था अगर कोई मुझे गाली भी देता है तो भी मैं कहता हूँ बाबा देखो आपको गाली दे रहे हैं, और कोई प्रशंसा भी करता है तो भी मैं कहता हूँ देखो बाबा आपकी प्रशंसा,
उसको
दोनों उसको
उसको ट्रांसफर कर दो।
फिर बाबा को हंस के बोलता है देखो बाबा आपको इतनी गाली दे रहा है क्या बात हो गई, ऐसे कितना अच्छा
कुछ करो, यहाँ पे आओ अपनी खुद की गाली करो,
अर्पण करता है।
तो यही है आज का टॉपिक था, और जितना जो कुछ थोड़ा बहुत चिंतन चला उसके आधार पे ये सारी चीजें, तो हमें निरंतर इस बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और चेकिंग करनी है ताकि हम इन सारी चीजों से बचे रहे, ठीक है।